शिव शक्ति तू शिव प्रिया तू शिव चेतना तू शिव अर्धांग तू पीड़ित और सी सकते मन पर अपनी करुणामयी वर्षा दे। जन्मों से भक्त ढूंढ रहे हैं अब उनमें नव चेतना भर दे। शिव शक्ति तू शिव प्रिया तू शिव चेतना तू शिव अर्धांग तू। हे ब्रह्मचारिणी तपस्विनी हे जगत माता शिव शक्ति हे ममतामयी सरस्वती हे करुणामयी भगवती। मूर्छित मन के सुखे वन में अपनी करुणा सरिता बहा दे। जन्मों से भक्त ढूंढ रहे हैं अब उनमें नव चेतना भर। शिव शक्ति तू शिव प्रिया तू शिव चेतना तू शिव अर्धा। चामुंडा हे निशुंभ शुंभ हननी हे महिषासुर मर्दिनी हे चंड मुंड विनाशिनी हे असुर संहारिणी। वीरान हो गए हृदय उपवन में रंग बिरंगे पुष्प खिला दे। जन्मों से भक्त ढूंढ रहे हैं अब उनमें नव चेतना भर। शिव शक्ति तू शिव प्रिया तू शिव चेतना तू शिव अर्धांग तू। हे ज्ञान परी हे पार्वती हे देव माता हे वैष्णवी हे भद्र काली हे काल रात्रि हे अग्नि ज्वाला हे रौद्रमुखी। व्याकुल ननु की सुखी धरती पर खुशी की शहनाई बजा दे। जन्मों से भक्त ढूंढ रहे हैं अब उनमें नव चेतना भर। शिव शक्ति तू शिव प्रिया तू शिव चेतना तू शिव अर्धांग तू।
ओम शांति। लगभग 200 या 300 वर्ष पूर्व जापान में एक छोटा सा राज्य था और अचानक एक बड़े राज्य ने उस पर हमला कर दिया था। युद्ध से पहले छोटे राज्य के राजा और सैनिकों ने मंत्रणा की। सिपाहियों ने कहा वो राज्य बहुत बड़ा है, उनकी सेना हमसे 10 गुना ज़्यादा है, हमारी हार निश्चित है, हम चाहे कुछ भी कर ले कुछ भी तो भी हम जीत नहीं सकते। उनके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा यही होता होगा, या तो हम भाग जाए या फिर समर्पण कर लें। राजा भी सोचता है मंत्रियों ने तो सत्य ही कहा है, हम जीत ही नहीं सकते उनसे। फिर भी राजा कहता है, एक ज़ेन मोनेस्ट्री है, एक ज़ेन गुरु है, उससे जाकर मैं विचार विमर्श करता हूँ और फिर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। राजा जाता है और उस बूढ़े फकीर से मिलता है और उसे सारी बात बताता है। वो फकीर कहता है, इसमें डरने की क्या बात है, तुम मुझे अपना प्रमुख सेनापति बना दो, मैं सबको ले जाऊंगा। ये सुनते ही राजा के मन में शक्ति का संचार होता है, सोचता है इतना आत्मविश्वास। राजा के मन में आता है मना करूं, परंतु उस फकीर का आत्मविश्वास और देश प्रेम देखकर राजा सहमति दे देता है और वो फकीर सेना के साथ निकल पड़ता है युद्ध करने के लिए। सारे सैनिक घबराए हुए हैं, अस्वीकार भाव से निकलते हैं और उस राज्य के बाहर ही एक मंदिर होता है। वो फकीर कहता है, तुम लोग यहीं रुको, मैं मंदिर में जाकर भगवान से पूछ कर आता हूँ। वो अंदर जाता है और भगवान से सबके सामने कहता है कि हे प्रभु, जाने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे पास एक सिक्का है, इसको मैं उछालूंगा, यदि चित आया तो हम जाएंगे और मैं मानूंगा कि तुम्हारा आशीर्वाद हमारे साथ है और हमारी विजय निश्चित है, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता, और यदि पट आया तो हम वापस चले जाएंगे। सारे सैनिक देखते रहते हैं, वो हजारों सैनिक क्या होता है। वो सिक्का हवा में उछालता है और सबके सामने चिल्लाता है, चित, अर्थात हमारी विजय निश्चित है, अब हमें कोई नहीं हरा सकता। उसकी ये बातें सुनकर सभी सैनिक शक्ति से भर जाते हैं, प्रेरणा से भर जाते हैं और वो लोग जाते हैं और घमासान युद्ध होता है 10 दिन तक दिन रात, और इतनी बहादुरी से लड़ते हैं कि 10 गुना अधिक जो अरिदल शत्रु का सैन्य था उसको पराजित कर देते और विजयी होकर लौटते हैं। सभी बहुत खुश। वो फकीर सेनापति सबसे आगे लौटते हुए वापस उस मंदिर में रुकता है और अपनी सेना से कहता है कि हमें भगवान का धन्यवाद देना होगा। वो भगवान के सामने नतमस्तक होता है और सबसे कहता है कि ये प्रभु का आशीर्वाद ही था जिसने हमें जिताया, पर एक बात मैं तुम सबको बता देना चाहता हूँ, जो सिक्का मैंने उछाला था उसके दोनों तरफ ही चित ही था, तो हारने का कोई कारण ही नहीं था। और ये भी ना समझो कि केवल भगवान की दया हो गई या आशीर्वाद हो गया जिससे हम जीते हैं, हमारा ही मन, हारा हुआ मन, पराजित मन, परिस्थितियों से पराजित होता है, विजयी मन विजयी होता है, पराजित मन पराजित होता है। परिस्थितियां इतनी बड़ी है ही नहीं जितनी हम समझते हैं। जब हम स्वयं को भूलते हैं तब परिस्थितियां बड़ी होती है। आत्मस्मरण यह सबसे बड़ी साधना है, सेल्फ रिमेम्बरिंग सबसे बड़ी साधना है। अभी एक अभ्यास करेंगे, अपनी डायरी में 5 बार लिखेंगे, मैं आत्मा हूं। पर रुको, वो इतने छोटे शब्दों में लिखना, इतने छोटे शब्दों में, जितने छोटे शब्दों में वो लिखा जा सके, एकदम माइक्रोस्कोपिक हैंडराइटिंग में लिखना है, इतने छोटे शब्दों में कि एक लाइन में शायद 5 या 10 बार मैं आत्मा हूं आ जाए। स्टार्ट, एकदम छोटे शब्दों में, फिर भी पढ़ा भी जाए, माइक्रोस्कोपिक हैंडराइटिंग, मैं आत्मा हूं। कैसे लिखना है? माइक्रोस्कोपिक हैंडराइटिंग में, एकदम सूक्ष्म, अक्षर एकदम छोटे हो, जितने बारीक में लिखा जा सकता है उतने बारीक में 5 बार लिखना है, मैं आत्मा हूं। जिनका 5 बार हो गया है वो और 5 बार लिखेंगे, मैं आत्मा हूं, अत्यंत छोटे अक्षरों में, जितना पहले लिखा था उससे अब आधे में लिखना है, जितना पहली बार लिखा था उससे भी, सभी लिखेंगे। हो गया, दिख रहा है क्या कुछ? तो ये लिखते समय क्या अनुभव किया, क्या अनुभव किया, क्या अनुभव किया, कॉन्सेंट्रेशन, सबसे पहला अनुभव है कॉन्सेंट्रेशन एकदम बढ़ गया, एक दूसरा, साइलेंस का अनुभव हुआ, तीसरा अटेंशन, बिना अटेंशन के ये काम नहीं किया जा सकता। अगर डिस्टरबेंस चल रहा है और लिखने को कहा तो ये नहीं लिखा जा सकता है, परंतु हमें अभ्यास डिस्टरबेंस के साथ भी करना है, तो अभी इस अभ्यास को डिस्टरबेंस के साथ करेंगे, ठीक है? पहले एक ही संकल्प, मैं आत्मा हूँ, तभी स्थिर बैठेंगे और एक म्यूजिक बजेगा, सभी आंखें बंद करेंगे और मन ही मन दोहराएंगे, मैं आत्मा हूँ। आंखें बंद, एकाग्र, अभी सभी फिर से लिखेंगे माइक्रोस्कोपिक हैंडराइटिंग में, मैं आत्मा हूँ। स्टार्ट द म्यूजिक, म्यूजिक चलते रहेगा। म्यूजिक कैसा था? अच्छा था कि पता नहीं, कैसा था? कौन सा वॉशिंग पाउडर था? कौन सा बताओ? निर्मा? मतलब आप सुन रहे थे? करना क्या था? करना क्या था? सुनना ही नहीं था। चारों तरफ ढिंडोरा पीटता रहे, चारों तरफ शोरगुल, आवाज, हलचल, और हम संपूर्ण एकाग्र। ऐसी हमारी एकाग्रता हो। अभी फिर से एक बार अभ्यास करेंगे, सामने देखेंगे, आंखें खुली। इस बार कोई एक पॉइंट को पकड़ लो और सोचो वो शिव बाबा है, और वहाँ से शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में आ रही है। शिव बाबा से शक्तियाँ मुझ आत्मा में आ रही है। बस ये एक ही संकल्प। स्टार्ट द म्यूजिक। इसको कहा जाता है साउंड प्रूफ कॉन्सेंट्रेशन। इसको कहा जाता है साउंड प्रूफ हैंडराइटिंग प्रैक्टिस। इतना ही डिस्टरबेंस, पर उसमें हमने लिखा, और कैसे लिखा? माइक्रोस्कोपिक हैंडराइटिंग में। और जितना छोटा लिखेंगे, बारीक, उतनी एकाग्रता ज्यादा चाहिए, अटेंशन ज्यादा चाहिए। तो ये अभ्यास है अपनी एकाग्रता को बढ़ाने का। आवाज से परे जाना आसान है, पर अभ्यास आवाज से परे से आवाज में आने का भी करना है। शरीर से बाहर जाना आसान है, पर एक अभ्यास शरीर में आने का भी करना है। अंतर्मुखता होना होना अंतर्मुखी होना आसान है, परंतु बाह्य मुक्ता में आने का भी अभ्यास करना है। परंतु वो बाह्य मुक्ता में आते हुए भी केंद्र अंतर्मुखता। मौन रहना बहुत आसान है, बड़ा आसान काम है, बोलना ही नहीं है, चुप। परंतु बोलते हुए भी मौन रहना, ये साधना है। शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे रहना, ये साधना है। आसान पथ है, फिर भी वो कठिन हो जाता है उलझन के कारण, कंफ्यूजन के कारण, बहानों के कारण। और वो सारे बहाने, वो सारी उलझने कहीं ना कहीं बनावटी, हमारे ही उपद्रवी और षड्यंत्रकारी मन द्वारा निर्मित होती है। तो आज हम ऐसी तीन बातों की चर्चा करेंगे। थ्री टाइप्स ऑफ कन्फ्यूजन, या फिर तीन बातें जो कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। अभी बारीक हैंडराइटिंग में नहीं लिखना है, वो हो गई एक्टिविटी। अभी नॉर्मल तीन प्रकार के फॉन्ट्स होते हैं, एक स्मॉल, एक मीडियम, एक लार्ज। अभी मीडियम साइज में लिखना है, पर कभी कभी इसका भी अभ्यास करना है। पूरी की पूरी मुरली लिखने का अभ्यास, परंतु हाफ पेज में। कितना पेज में? हाफ। कितनी एकाग्रता चाहिए? या एक पेज में, चार पेज की मुरली, बहुत माइन्यूट अक्षरों में, तब ही ये काम हो सकता है। तो सबसे पहला सूत्र है जो उलझन क्रिएट करता है, कंफ्यूजन, थ्री सीज है। उसमें पहला सी है कंपैरिजन। जैसे ही हम अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं दूसरों से किसी भी चीज में, उलझन मन में तैयार होना चालू हो जाती है। एक चिड़िया आकाश में उड़ती है, वो कभी नहीं सोचती कि मैं पानी में तैरूं, या मछली ये नहीं सोचती कि मुझे भी उड़ना है, पर व्यक्ति कंपेयर करते रहता है। ये भूल जाता है कि हर एक व्यक्ति अपने आप में एक अद्वितीय कलाकृति है, अ यूनिक मास्टरपीस। मेरे जैसा और कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरे संघर्ष, मेरा स्वभाव, मेरा बचपन, मेरी प्रकृति सबसे भिन्न है। हाँ, मैं सबसे सीख सकता हूँ, दूसरों में जो गुण है वो ले सकता हूँ, परंतु मैं और वो अलग है। जस्टिस अय्यर मधुबन में आए थे, कस्टडियन ऑफ लॉ जिनको कहा जाता है, 84 से ज़्यादा किताबें उन्होंने लिखी है लॉ पर, लिखी थी। वो आए थे मधुबन चीफ गेस्ट, इंद्रप्रस्थ में रुके थे, रात में कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है। उन्होंने 9 बजे कहा कि मेरे सोने का समय हो गया है, क्योंकि मुझे 2 बजे उठना होता है। किस लिए उठना है 2 बजे? 2 बजे उठकर वो लिखते हैं किताबें, और ये उनकी आदत थी, सुबह 2 बजे उठना और लिखना लॉ की किताबें कोई टॉपिक पर। उस समय माइंड फ्रेश होता है। तो उन्होंने सबसे परमिशन ली कि मुझे माफ़ करना, आप लोगों का प्रोग्राम अच्छा है पर मैं इसको अटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे जाने का समय, सोने का समय है। वो चले गए। एक संसार का व्यक्ति, पर वो अपनी धारणाओं में कितना मजबूत है। एक वीडियो किसी ने भेजा था स्वामी प्रेमानंद महाराज जी का, छोटा सा, उसमें वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे थे, आंखों में आंसू थे उनके। वो कह रहे थे, उम्र इतनी बढ़ गई, जीवन पूरा ब्रह्मचर्य में बीता, सेवा में बीता, परंतु अब तक मुझे ईश्वर प्राप्ति क्यों नहीं हुई? मुझ में ऐसी कौन सी कमी रह गई है प्रभु, जो तू मुझे अब तक नहीं मिला? और वो रो रहे हैं उसमें, एक बूढ़ा व्यक्ति रो रहा है। संसार के लोग भी रोते हैं, पत्नी के लिए रोते हैं, पति के लिए रोते हैं, बकेट भर भर के रोते हैं, पर जो भगवान के लिए रोए, कितनी शुद्ध चेतना होगी, कैसा असीम प्रेम होगा हृदय में भगवान के लिए। डायलिसिस पर है, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस चलता है, एक एक डायलिसिस 4 से 5 घंटा होता है। शरीर का सारा खून मशीन में जाता है, शुद्ध होकर वापस लौटता है। क्या ऐसा प्रेम उनके हृदय में है जिन्होंने भगवान को पा लिया, परमात्म प्रेम। हमें सबसे सीखना है। ये ना समझो कि भक्त हमसे छोटे हैं। हमें याद है, हम एक स्थान पर गए थे 10 दिन मौन के लिए, और वो आश्रम था एक, हमारा जो सेंटर था उससे दूर, सेंटर नहीं था वो, एक नेचर क्योर सेंटर, उनका ही वो गेस्ट हाउस था। तो बहन जी ने कहा आप यहाँ रह के तपस्या करो। हम 10 दिन थे वहाँ पर अकेले नदी के तट पर, कृष्णा नदी के तट पर, और उसी के बाजू में एक मंदिर था, और हम मंदिर में गए और वहाँ हमारी मुलाकात एक भक्त से हुई थी जो कि लगभग जन्मांध था, छोटी उम्र थी, 30 वर्ष होगा, 10-12 साल का था, तभी उसकी आंखें चली गई, उसे कुछ भी नहीं दिखता है। वो लॉयर, उसने LLB किया हुआ, और एस्कॉन में, एस्कॉन का मंदिर था हरे कृष्ण। तो हम उनसे मिले और उन्होंने हमको 8 दिन तक गीता पढ़ाई, सिखाई। हमने उनसे कहा था मुझे सीखना है, आप सिखाओ। और गीता का एक एक श्लोक लगभग उन्हें याद ही था। 8-9 दिन हम दोनों की चर्चा हुई, हम पूछते थे वो बताते थे, हर प्रश्न का उत्तर उनके पास था। और इतना अनन्य कृष्ण प्रेम, इतना अनन्य प्रभु प्रेम, वो 2 छड़ियाँ रखते थे, एक वॉशरूम के लिए, एक कोर्ट में जाने के लिए, उनको दिखता नहीं था कुछ। हम कहा अकेले जाते हो? अकेले जाते, ठक 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 करते हुए उनके कमरे में। उनको पता है कौन सी वस्तु कहाँ रखी है, भोजन आता है कोई लेकर, कितना देर तो भोजन को प्रणाम ही करना। और हमने एक चीज़ उनकी देखी, भगवद गीता ब्रेल लिपि में इतनी सारी उनके पास थी, और एक दूसरी भगवद गीता थी जिससे वो हमको कहते थे आप पढ़ो, उसका भावार्थ हिंदी में, इंग्लिश में, और वो संस्कृत उनको पता थी। तो एक बात हमने ऑब्जर्व की कि वो जो भगवद गीता थी उसको वो हाथ में लिया ऐसे ऐसे करते थे, इधर से इधर से। हमने पूछा आप क्या कर रहे हो? वो कहते थे आई एम फीलिंग कृष्णा, मैं कृष्ण को फील कर रहा हूं। कितना प्रेम। उन्होंने कहा था हम, वो एक बार वृंदावन गए थे, अनुभव सुनाया था। हमने कहा ट्रेन में भी अकेले जाते हो? हाँ अकेले जाता हूँ। उनको सब आता है, व्हाट्सएप चलाना भी आता है, कुछ दिखता नहीं है परंतु सब आता है। सीख, उनके मोबाइल ही अलग है, ये उसमें कुछ भी नहीं दिखता है, हमको तो कुछ भी नहीं दिखा ऐसे, और उनको सब दिखता है, उंगलियों से ही सब करते हैं, कोर्ट में काम करते हैं, जज जो है उसके बाजू में बैठते हैं, चीफ जस्टिस के बाजू में। तो उन्होंने अनुभव सुनाया था कि वो वृंदावन गए थे और वहाँ उनको कमरा दिया गया, और उनकी बहुत इच्छा थी कि सुबह की मंगल आरती करनी है 4 बजे, पर पहुँचाने वाला कोई नहीं था उनके एकोमोडेशन से मंदिर तक, तो वो अकेले चले गए और कहाँ रास्ता भटक गए पता नहीं, एक जंगल में घुस गए, अंधेरे सुबह सुबह अंधेरे में, उनको दिखता कुछ नहीं, और जा रहे जा रहे जा रहे बहुत आगे निकल गया, कुछ भी मंदिर जैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो खो गए अब क्या करूँ। पीछे आए, आगे आए, पीछे आगे, पीछे आगे, फिर एक जगह रुक गए और पुकारने लगे, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण मेरी मदद कर, और फिर पीछे पीछे होते गए, पीछे 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 सड़क तक आ गए। फिर किसी ने देखा ये कौन है और इस जंगल में कहाँ है, तो उन्होंने बताया आई हैव लॉस्ट द पाथ, मैं मार्ग खो गया हूँ। और वो व्यक्ति फिर उनको मंदिर तक ले गया। आत्माओं में कितना प्रेम है, कितनी भक्ति है, कितना विश्वास है। वो कुछ भी सुनना नहीं चाहते कृष्ण के अतिरिक्त, इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल, और ना ही हमने उसको कुछ अपना ज्ञान बताया, कुछ भी नहीं बताया, उससे सीखा और वो सिखाते रहे, अभी भी संपर्क में है। और कितनी शुद्ध आत्मा है, और वो मंदिर में रहते हैं, जॉब करते हैं, रहते मंदिर में और सेवा करते हैं। तो कहने का भाव, उस किताब से उनका कितना प्रेम था, उस गीता से, ऐसे ऐसे उसको करते रहते थे, फील करते थे। तो कंपैरिजन नहीं, क्या करना है, सीखना है। किससे सीखना है, सभी से सीखना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये हम जो ज्ञानी और अज्ञानी शब्द प्रयोग करते हैं, ये भी कितना अहंकार से भरे शब्द है। ये अज्ञानी है, ये बीके और ये नॉन बीके। जैसे हमने स्टैंप लगा दिया है, इन शब्दों को भी बदलने की आवश्यकता है। एक शब्द हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता है, जो बहुत प्रयोग किया जाता है मधुबन में, लेबर। लेबर नहीं आया आज, आप लोग क्या कहते हैं पता नहीं। हाँ, श्रमिक, श्रमिक वो हिंदी का शब्द है, पर उपयोग कितना होता है पता नहीं। हम हिंदुजा हॉस्पिटल थे मुंबई में, वहाँ जो हाउसकीपिंग स्टाफ है, वहाँ पे सारे नर्सेस और डॉक्टर, हाउसकीपिंग जो स्टाफ है, झाड़ू लगाने वाले और पोछा लगाने वाले, उनको कहते थे अनिल जी, रमेश जी। आज रमेश जी नहीं आए, आज अनिल जी नहीं आए, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता था। मधुबन पहुँचे तो पता चला चार लेबर नहीं आए, क्या उनको अच्छा लगता होगा ये सुनकर। पर यही शब्द प्रयोग होता है। या फिर हाउसकीपिंग स्टाफ हॉस्पिटल में ये यूज होता है, या फिर उनका नाम और आगे जी, ये बीके, ये नॉन बीके, ये अज्ञानियों के लिए रखा है भोजन, और तुम हो ज्ञानी। हमें पता है कि वो कभी ज्ञान में नहीं आएगी, ऐसे हम स्टैंप लगा रहे नॉन बीके। एक पति अपने पत्नी को 20 साल तक विरोध करता है, तकलीफ देता है, सताता है, तंग करता है, पवित्रता के लिए झगड़े करता है, पुलिस केस करता है, और 20 साल के बाद एक दिन वो ज्ञान में आ जाता है। अर्थात वो 20 साल भी देवकुल की ही आत्मा थी, अर्थात वो ब्राह्मण आत्मा ही थी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये अज्ञानी है, क्या ये नॉन बीके है। पर ये भी सब तरह प्रयोग होता है। प्रोग्राम किसका है, बीके का है कि नॉन बीके का है, क्या कहना चाहिए, कोई सजेशन, कोई सजेशंस इस बात के लिए। अगर कोई सजेशन आपकी तरफ से, क्या कह रहे हैं हम पूछ रहे हैं, पहले आप बताओ तो फिर हम बताएं, क्या कहना भाई जी बहन जी। नहीं, जो बाहर वाले हैं, जो ज्ञान में नहीं है, उनके लिए हम क्या शब्द प्रयोग करें। एक तो शब्द जो हो रहा है प्रयोग, वो है नॉन बी के, अज्ञानी, या अज्ञानियों के लिए है। क्या कहे, नए, ये नयों के लिए, हाँ ये अच्छा है। और हाँ, होने वाले बाबा के बच्चों के लिए भोजन, इतना बड़ा उसको एक शब्द बनाया जा सकता है, भावी, भावी ब्राह्मण, भावी देवता। और और भी कुछ? हाँ, फ्यूचर ब्राह्मण, ब्राह्मण इन द मेकिंग, और बाबा के क्या, बाबा के बच्चे क्या? भगवान ऐसा भेदभाव करता है? उसके लिए तो सभी कैसे है, सारी सृष्टि की सभी आत्माएं उसके लिए संतान है। एक साकार मुरली है जिसमें बाबा ने कहा, मैं केवल तुम्हारा बाप नहीं हूं, ये मत भूलना, मैं सबका बाप हूं, मैं सबका बाप हूं, सबका। एक फकीर होता है जिसे आदत होती है हमेशा दूसरों को खिलाना फिर खाना। जब तक दूसरों को नहीं खिलाएंगे वो नहीं खाता था, जो भी उसे मिलता था, थोड़ा भी मिलता था, पर उसको रहता था कि दूसरों को मैं खिलाऊं फिर ही खुद खाऊं। और एक बार उसे कोई भी नहीं मिलता है खिलाने के लिए, या तो लोगों ने भोजन कर लिया है या तो कहीं पर आमंत्रित है, वो इंतज़ार करते रहता है, दोपहर हो जाती है कोई नहीं आता है, शाम होने लगती है कोई नहीं आता है, और शाम को अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति आता है, एक बूढ़ा भिखारी, और कहता है मैं सुबह से भूखा हूँ। इस फकीर को इतनी खुशी होती, तुम्हारा ही तो इंतज़ार था, आओ बैठो भोजन करो, बहुत आओ भगत करता है, स्वागत करता है अपनी कुटिया में, उसे भोजन खिलाता है, और वो व्यक्ति भोजन खाने लगता है, एकदम उसका हाथ पकड़ता है, आए और सीधा खाना चालू किया, पहले अल्लाह को, खुदा को, उस परवरदिगार को धन्यवाद तो करो। वो कहता है कौन खुदा, मैं खुदा विदा को नहीं मानता। वो बूढ़ा व्यक्ति चिल्ला के कहता है मुझे तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं है कि ऐसा कोई खुदा भी है। वो फकीर क्रोधित हो जाता है, वो कहता है फिर भोजन तुम नहीं खा सकते, बिना उसको याद किए तुम कैसे खा सकते हो, वही तो हमको खिला रहा है। वो कहता है मैं मानता ही नहीं तो क्यों खाऊं। और उसी समय एक आकाशवाणी होती है और भगवान कहते हैं मैं खुदा, तुम कौन हो इसे खाने से रोकने की वाले, मैं इसे पिछले 70 साल से खिला रहा हूं, मैं इसको पिछले 70 साल से खिला रहा हूं, और तुम कहते हो कि मत खाना, इसने मुझे कभी नहीं माना, रादर ये मुझे गालियां देता है रोज, फिर भी मैं इसे खिला रहा हूं। तब उस फकीर को एकदम ठेस लगती है, ये मैं क्या कर रहा था। परमात्मा निष्पक्ष है, उसके लिए सब समान है, चाहे उसको किसी ने जाना नहीं जाना, पहचाना नहीं पहचाना, उसकी संतान। और कोई शब्द बाहर वालों के लिए, नयों के लिए, न्यू कमर के लिए, इसके बारे में आज सोचना है। कोई अच्छा शब्द अगर निकलता है तो बहुत अच्छा, या फिर हम कोई शब्द बताएंगे। सबसे पहली पॉइंट जो उलझन क्रिएट करती वो है कंपैरिजन, तुलना। तुलना एक सूक्ष्म विषय है, इसको ज़्यादा आता है, इसको भाषा ज़्यादा आती है, इसको लिखना ज़्यादा आता है, इसने, इसके पास डिग्री ज़्यादा है, इसने पढ़ाई लिखाई इसने ज़्यादा की है, पर अध्यात्म में ये सारी चीज़ें कौन है? कितने बड़े बड़े, एक कोई IAS ऑफिसर इंडिया में, एक न्यूज़ आई थी ना बीच में, यंगेस्ट फीमेल IAS ऑफिसर, 21 एज में IAS ऑफिसर बन गई, और 2 साल के बाद इतना बड़ा स्कैम हुआ, करोड़ों का AI का स्कैम हो गया। उसमें वो पकड़ी गई, पैसा एक अजीब सा आकर्षण है उसमें, बड़ों बड़ों की बुद्धि को खराब कर देता है वो। इसलिए कोई कितना पढ़ा लिखा है परंतु घूस न लेने की शक्ति उस IAS की एग्जाम से नहीं आएगी, उसके लिए आत्मबल की आवश्यकता है, सच्चाई के मार्ग पर चलना, निष्कपट होकर चलना, लाखों करोड़ों हाथ में हो, इस हाथ से आए और इस हाथ से चले गए, अनटच्ड, मेरा है ही नहीं है। रामकृष्ण परमहंस अपने बचपन में वो कॉइन रखते थे, मिट्टी रखते थे और एक खोटा पैसा, ये तीनों एक ही है। नरेंद्र को लगा कि वास्तव में इनको पैसों की एलर्जी है, ये खुद कहते हैं कि मुझे एलर्जी है, मैं सो नहीं पाऊंगा। वो क्या करता है, एक बार उनके तकिया के नीचे एक आना रख देता है और छुपके से देखता है क्या होता है अब इनको। वहां से श्री रामकृष्ण आते हैं और वो जैसे ही सोते हैं एकदम उनको करंट लगता है, क्या है ये। वो देखते हैं वहां एक आना है, चिल्लाते हृदय हृदय जो उनका भांजा होता है, इसको ये यहां से हटाओ, स्पर्श ही नहीं अच्छा लगता है। वस्तुओं का भी स्पर्श से, वो एक अलग ही चेतना थी, अलग ही आत्मा, निरंतर उस भाव समाधि में रहते थे। उनको नीचे लाने के लिए उनको कुछ खिलाया जाता था ताकि वो धरती पर आए, वो धरती पे जैसे रहते ही नहीं है, उनको नीचे लाना होता था, आओ नीचे। वो संदेश, बंगाली मिठाई खिलाई जाती थी तो वो धरती पर आते थे फिर, पर थोड़ी ही देर धरती पर रहे कि तुरंत वापस भाव समाधि। किसी ने गीत गा लिया, पंछियों को देख लिया ऊपर, जैसे देह में जबरदस्ती रखा हुआ है। थोड़ा सा काम हो गया कि निकले बाहर, थोड़ा सा काम हो गया कि निकले बाहर, ये कैसी अवस्था है चेतना की। इसलिए सबसे सीखते रहना है, भक्तों से सीखो, ज्ञानियों से सीखो, सबसे, इस ब्राह्मण परिवार से में सबसे सीखो। निर्वीर भाई जी की एक, भाई साहब की एक क्लास है जिसमें उन्होंने कहा है, मधुबन में एक समय 400 लोग थे, तो तब उन्होंने कहा था कि मेरे 400 गुरु हैं, जितने लोग उतने गुरु। उस क्लास में उन्होंने कहा है, हम लोग उस समय 400 लोग थे और मैं ये समझता था कि मेरे ये सारे गुरु हैं। दत्तात्रेय का उदाहरण दिया जाता है ना, 24 गुरु, सबको अपना गुरु मानो। कितनी अच्छा, कितना अच्छा अभ्यास है। दत्तात्रेय जा रहे हैं, देख रहे हैं, एक स्त्री है, उसकी शादी होने वाली और उसको देखने के लिए लड़के वाले आए हैं। वो लड़के वाले उस कमरे में बैठे हैं, वो अंदर है, धान कूट रही है, उसके हाथ में चूड़ियाँ है, इधर तीन चार चूड़ियाँ, इधर तीन चार, वो ऐसे ऐसे कूट रही है तो आवाज़ आती है। वो एक चूड़ी निकालती है, फिर कूटती है, फिर भी आवाज़ आती है, दूसरी निकालती है, फिर एक लास्ट में एक इधर बजती है, एक इधर बजती है, फिर आवाज़ नहीं आती है। दत्तात्रेय कहते, ये लड़की मेरा गुरु है, सन्यासी को अकेले ही रहना चाहिए, दो आ गए तो आवाज होगा। ये मन की अवस्था है, दो आ गए कि बातें चालू, फिर मौन नहीं रहेगा। उससे भी उन्होंने सीख लिया और आगे निकल गए। एक शिकारी शिकार निशाना लगाए हुए है। दत्तात्रेय उससे पूछते, ये रास्ता कहाँ जाता है, वो आंसर नहीं देता है। दूसरी बार, तीसरी बार पूछते, वो अपना शिकार करता है और फिर कहता है, आप कुछ कह रहे थे। तो कुछ नहीं कह रहे थे, आप मेरे गुरु हो, बस यही। इतनी एकाग्रता कि दूसरा क्या कहता है सुनाई नहीं देता है। वॉशिंग पाउडर कौन सा था वैसे, कौन सा था, कौन सा, याद नहीं, फिर ठीक है पास। वैसे पता तो है, निर्मा ही था। तो कंपेयर नहीं करना है और कंपेयर करके दुखी नहीं होना है। अध्यात्म में गिना जाता है आत्मा ने कितना बल जमा किया है, मौन का, एकांत का, साधना का, ज्ञान का, कितना ज्ञान का चिंतन किया है, कितने क्लासेस कराए और सुनी, वो नहीं, कितना चिंतन किया है। क्योंकि व्यक्ति जो चिंतन करता है उसमें से थोड़ा ही सुना पाता है। तो इस कंपैरिजन से मुक्त होना है। दूसरा है क्रिटिसिज्म, दूसरों को क्रिटिसाइज करना। हर एक आत्मा अपनी इंडिविजुअल यात्रा पर है। यदि हम संसार में देखें, हर व्यक्ति दूसरे को कुछ ना कुछ कह रहा है। यदि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के विरोध में कुछ कहा तो दूसरा पक्ष कभी शांत बैठता है क्या? कभी नहीं। वो और पुरानी फाइलें खोल खोल के बताता है, 2010 में तुमने ऐसा किया था, 2020 में तुमने ऐसा किया था, 50 साल पहले तुमने ये किया था, वो किया था। तो सब लोग किस में लगे हुए? एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने में। डिबेट करते हैं, झगड़े होते हैं, पर इन सब से मिलता कुछ भी नहीं है। इन द बैटल ऑफ ईगो द विनर इज लूजर, अंग्रेजी में कहावत है। अहंकार के युद्ध में जो जीतता है वो हारता है। अहंकार की आवाज, बोर्ड लगा हुआ है ना यहाँ, कौन सा है? सीढ़ियों पर एक बोर्ड लगा हुआ है, चित्र है, राधा दीदी का चित्र है, दादी जानकी से शायद टोली लेते हुए या कुछ करते हुए। उसमें अहंकार की आवाज शब्द है। किस बात के लिए लिखा है वो? क्या मुझे ही करना है, ऐसा लिखा है? पूरा क्या लिखा है? अभी आपको काम दे रहे हैं एक और। हर जगह हमने देखा अव्यक्त इशारे लिखे हुए हैं, अलग अलग जगह पर। उसका फोटो ले लेना अपने मोबाइल पर, कल की क्लास में कहीं पर भी कभी कुछ भी पूछेंगे, ठीक है? याद भी रखना है। तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुमको चुना है। कहाँ लिखा है ये? तुमने मुझे नहीं ढूंढा है, मैंने तुमको ढूंढा है। भोजन में कहाँ पर? पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट फ्लोर तो है ही, उसमें कौन सा पहला खंबा, दूसरा और तीसरा? चाय वाला। तो अव्यक्त इशारे लिखे हुए पढ़ने के लिए और याद रखने के लिए। तो क्रिटिसाइज, एक आश्रम होता है जिसमें गुरु होता है, पर एक शिष्य जो होता है हमेशा गुरु को क्रिटिसाइज करते हैं। गुरु जो भी बात कहेगा उसके एंटी में उसके पास 2-3 पॉइंट्स होते हैं। कुछ भी कहे, 2-3 पॉइंट्स तैयार होते हैं, और बाकी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि बाकियों का बहुत विश्वास है, प्यार है उस गुरु से। कोई उनके सामने सामने ऐसा विरोध करे अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है, पर क्या करें, गुरु को बुरा नहीं लग रहा है तो। और इस कहानी में दिखाया, एक दिन कुछ हो जाता है और उस शिष्य की मृत्यु हो जाती है। सभी लोग मन ही मन थोड़ा खुश भी हो जाते हैं, अच्छा हुआ, पर वो गुरु दुखी है। लोग पूछते हैं, आप इतना क्यों दुख कर रहे हो? वो कहते हैं, वो एक ही तो था पूरे कक्षा में जिससे मैं सीखता था, जिसकी वजह से मुझे अलर्टनेस थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती थी, क्योंकि उसके पास मेरी कही हुई हर बात के 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एंटी पॉइंट्स होते थे, और वो कोई सोच कर नहीं आता था। प्रखर बुद्धि थी, क्रिटिकल एनालिसिस, जैसे जर्नलिस्ट होते हैं ना, बड़े शार्प होते हैं, बहुत शार्प होते हैं। जो लेखक होते हैं ना, बड़े शार्प होते हैं। कवि होते हैं, बड़े सूक्ष्म संवेदनशील होते हैं, बारीक बारीक चीजों को देख लेते हैं, जो संसार के लोग नहीं देख पाते। सूक्ष्म चीजों को देख लेते हैं दूर से, न्यू आइडियाज अपने आप आती है उनके पास। सबसे पहला तो क्रिटिसाइज हमें करना नहीं है, और दूसरा, अगर क्रिटिसिज्म होता है तो उसे पॉजिटिव फीडबैक के तौर पर उसे स्वीकार करना है। जैसे ही कोई हमें अपनी गलती बताता है तो क्या करना है? उसको सुन लेना है। उसमें फिर दो है, एक तो कौन कह रहा है उस पर महत्वपूर्ण है, किस भाव से कहा जा रहा है। कुछ लोग जो कह रहे हैं वो हमें सुधारने के लिए कह रहे हैं, उनका भाव बहुत शुद्ध है, पर दूसरे जो है उनका उद्देश्य सुधारना नहीं है, उनका उद्देश्य केवल ग्लानि करना है, उनका उद्देश्य केवल गिराना है, नीचा दिखाना है, उनसे हमें अप्रभावित रहना है, दूर ही रहना है और उनके प्रति केवल शुभ भावनाएं भेजनी है। ओम मेडिटेशन हॉल में एक बार मधुबन निवासियों की मीटिंग चल रही थी, एक भाई सामने आया, दादी प्रकाशमणि बैठे थे, दादी के ही सामने दादी के खिलाफ इतना कुछ बोला नॉन स्टॉप, वो भी कि आप ऐसा करते हो, आप वैसा करते हो, पक्षपात करते हो, ऐसा वैसा। सब लोग थोड़ा चिढ़ रहे थे पर दादी शांति से सब कुछ सुन रही थी, बिना कुछ कहे, कुछ भी नहीं कहा, मौन। हमें अपने अधिकार याद रहते हैं, कर्तव्य भूल जाते हैं कि मेरे ये राइट्स है, मुझे ये मिलना चाहिए, मैं इतने सालों से हूं, पर कर्तव्य वो भूल जाता है। अधिकार सारे याद है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, दूसरा है क्रिटिसिज्म। एक तो किसी का हमें करना नहीं है, दूसरा अगर हमारा होता है तो जो कर रहा है उसके भाव को देखना है, अगर वो भाव बहुत शुद्ध है तो उसको पॉजिटिवली लेकर उस पर काम करना है। अगर वो हमें पता है कि ये पॉजिटिव नहीं है, उनका उद्देश्य हमें सिखाना नहीं है, हमारी ग्लानि ही करना है और वो सबकी ऐसी ही ग्लानि करते हैं, तब कवच धारण कर लेना है, अप्रभावित, निर्लेप। मैं आत्मा निर्लेप हूँ, आत्मा निर्लेप है नहीं, परंतु मैं आत्मा निर्लेप हूँ, ये आत्मा का सर्वोच्च सम्मान है। तो क्रिटिसिज्म, और तीसरा है कंप्लेंट। तीसरा सी क्या है? कंप्लेंट। किसी किसी की आदत ही है, कंप्लेंट ही करते रहते हैं, पूरे साल भर में एक ही बार मधुबन आते हैं, बड़ों से मिलते हैं, पर वहां जाकर धन्यवाद नहीं, कंप्लेंट का पिटारा खोलते हैं, हमारा ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है, हमारा वो हो रहा है, हमारा ये, हमारा वो, हमारा ऐसा, हमारा वैसा। इतनी कंप्लेंट्स, हमारे पास लेटर है, हमारा जो ओपीडी है उसका जो ड्रॉवर है उसमें इतने लेटर्स है लोगों के, उनको लगता है शायद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़े उसको, सब व्यर्थ ही लिखा रहता है, सेंटरों से आए हुए कुमारों के, कुमारियों के कंप्लेंट से भरे होते हैं लेटर्स, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कौन पढ़ेगा उसको, आठ आठ पेजेस के लेटर है, ऐसा किया उसने, वैसा किया, अब मैं ये करूँगा, कि मन की कल्पनाएं और कंप्लेंट्स भरे होते। एक आश्रम होता है जहाँ पर एक साल में केवल एक ही बार बोलने का अवसर दिया जाता है और केवल दो ही शब्द, उस आश्रम का नियम होता है मौन, साल में एक ही बार बोलना है गुरु के पास जाकर, वो भी केवल दो शब्द। एक व्यक्ति आता है आगंतुक, नया सन्यासी, वो दिन आता है जिस दिन बोलने का होता है एक साल के मौन के बाद, वो गुरु के पास जाता है और कहता है बेड हार्ड, बिस्तर कठोर, दो ही शब्द बोलने हैं, तो यहां जो बिस्तर जो दिया जा रहा है, तुम लोग जो दे रहे हो बड़ा हार्ड है, कुछ करना चाहिए तुमको, हमको इसलिए बुलाया इधर। एक साल और बीत जाता है, फिर से वो आश्रम गुरु के पास जाता है, फूड बैड, भोजन खराब, दो ही शब्द बोलने हैं कि यहाँ का जो भोजन है स्वादहीन है, बिल्कुल स्वाद नहीं है उसको, बेस्वाद। एक साल और बीतता है, फिर जाता है वो। कंपनी बैड, यहाँ के जो लोग हैं बहुत बुरे लोग हैं। गुरु उसको फिर दो ही शब्द कहता है, घर जाओ, गो ओम। दो शब्दों में उत्तर। जब एक साल के मौन के बाद एक ही बार मिलने का अवसर मिल रहा है, उसमें भी व्यक्ति क्या लेके जाता है, कंप्लेंट। साल में एक ही बार मधुबन जाने का अवसर है और वहां पर भी 10 लोगों से मिलकर क्या कहते हैं, हमारा ये हुआ, हमारा वो हुआ, हमारा ऐसा हुआ, हमारा वैसा हुआ, इससे मिलना है, उससे मिलना है, इससे मिलते, उससे मिलते। अभी तो दादियाँ नहीं रही, जब दादियाँ थी तब की बात। कंप्लेंट 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 कंप्लेंट, चित्त कंप्लेंट से भरा हुआ है। तो अपनी सारी कंप्लेंट्स को गिरा दे। कुछ एक्टिविटी है, वो कंचे है क्या, कंचे टाइप, बाद में करें, क्या कंप्लेंट करें, उसको रिप्लेस करना है ग्रेटिट्यूड से, धन्यवाद के भाव से। ये जो मिला है उसके लिए क्या, तेरा शुक्रिया, इतना तो मिला, जितना मिला उस पे हम क्या कर रहे हैं। स्वीकार कर लेना जो कुछ हो रहा है, इसका अर्थ ये नहीं हमने प्रगतिशील होना बंद कर दिया। एक्सेप्टेंस अर्थात प्रोग्रेसिव न होना ऐसा नहीं है, परिस्थितियों को स्वीकार किया है और आगे बढ़ना है, परंतु कंप्लेंट नहीं है, मेरा ये कम है, मेरा वो कम है, जगह कम है, जगह ज़्यादा है, जो है बहुत है। हम एक सेंटर पर गए थे बहुत पहले, वहाँ पर देखा दो ही स्टूडेंट है, केवल दो स्टूडेंट, कोकण एरिया महाराष्ट्र में। तो हमने बहन जी से पूछा था, यहाँ दो ही स्टूडेंट है? उसने कहा हाँ, यहाँ सब लोग मछली खाते हैं और वो बाकी सब चीज़ें तो सुन लेते हैं परंतु फिर रेगुलर नहीं हो पाते। और उस बहन जी ने अपनी एक बात बताई थी कि मैं पहले एक दूसरे सेंटर पर थी और वो बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर था जहाँ हर दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते थे और मैं बहुत बिजी रहती थी। पर अभी मैं कुछ सालों से यहाँ आई हूँ, छोटी जगह पर, छोटे गाँव में, और यहाँ इतनी सेवाएँ नहीं है। और उसने एक बात जो तब कही थी मुझे अब तक याद है, उस बहन जी ने कहा था, इस परिस्थिति को मैंने प्रेम से स्वीकार किया है, यहाँ सेवाएं नहीं है तो मैं क्या करती हूँ। हमने देखा उनकी स्थिति एकदम बहुत पावरफुल, सुबह से उठती है 2 बजे से और उसका पूरा अव्यक्त मुरलिया रखी हुई और वो अध्ययन करती रहती है, अंडरलाइन करती रहती है, नोट्स बनाती रहती है। उनके साथ वो हमको उस जेल में भी लेके गए थे जहाँ पर कुछ कैदियों से बात की थी। एक मार्ग ये भी था कंप्लेंट करना, वहाँ कितना अच्छा था, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये बंजर जमीन जमीन है, पर कोई कंप्लेंट नहीं थी, सेवाएं चालू थी उधर भी, पर लोग रेगुलर नहीं होते थे, वो एक अलग बात, आते थे बैठते थे पर रेगुलर केवल दो ही लोग थे। तो चाहे सामने 2 लोग बैठे हो या 2 लाख, स्थिति सेम। चाहे झोपड़ी हो या फिर जिसमें केवल 10 स्टूडेंट है या 10,000 स्टूडेंट। हमने एक सेवा केंद्र देखा था जहां सुबह की क्लास में 1,000 स्टूडेंट थे, 1,000 मॉर्निंग क्लास डेली। ऐसा नहीं कि जहाँ 1,000 है तो ज़्यादा खुशी, स्टूडेंट्स आएंगे, स्टूडेंट्स जाएंगे, वो आज है कल नहीं है। हमारे खुशी का आधार सेवा नहीं है, या है? किनका किनका है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या हमारे खुशी का आधार सेवा है? हमारे खुशी का आधार सेवा है? नहीं, हमारी खुशी है इसलिए सेवा कर रहे। अगर हमने अपनी खुशी का आधार सेवा को बना लिया तो आज जो सेवा मिली वो अगर छिन जाए तो फिर दुखी हो जाएंगे। तो कंप्लेंट नहीं। अभी हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, दो या तीन एक्टिविटीज। ये जो कंचे हैं, कंचे हैं क्या है, सबको एक एक दे दो। तो हमने तीन बातें देखी, सबको एक एक दे दो, एक 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 सबको दे दो, सबको एक 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 देना है यहाँ से। चलो, तो हमने तीन बातें देखी। कौन सी? सबसे पहला सी, सबसे पहला सी कंपैरिजन। कंपेयर नहीं करना है, सीखना है, सबसे सीखना है। कोई भी हो, छोटा सा बच्चा हो, छोटी सी कुमारी हो, उससे भी सीखना है। दूसरा सी, जोर से, क्रिटिसिज्म, विरोध। हम अपने क्रिटिक से ज्यादा सीखते हैं, प्रशंसक से बहुत कम। अगला कंप्लेंट। किसी किसी के नेचर में ही, डीएनए में ही कंप्लेंट भरा है। जहां जाएंगे उनको प्रॉब्लम है, किधर भी चले जाओ सब कुछ दे दो, कंप्लेंट तो है ही। हम रोज इतने पेशेंट्स देखते हैं, सब के कितनों को एडमिट, रोज पाँच छः सात आठ लोग एडमिट करते हैं और देखते हैं व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। दो लोग एक ही बीमारी के साथ एडमिट होते हैं, दोनों के रिएक्शंस अलग अलग। किसी को सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, किसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, किसी को सब कंप्लेंट ही कंप्लेंट है, कमरा ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, और किसी को इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, बाबा के घर में सब कुछ मिल रहा है, और किसी को यहाँ आने के बाद भी कुछ नहीं है। तो ये सब हमारे मन की बीमारी है, ये सारी उलझने। मार्ग बहुत आसान है, ये कंचा अपने पास ही रखना है, कल इसके साथ और कुछ काम करेंगे। सबको मिल गया? मिल गया? ये कंचा भी प्रतीक है निर्लेप का, इसको पानी में रात भर रख दो, कुछ होता है क्या सुबह? एक उदाहरण है जल में कमल का और दूसरा ये है अप्रभावित। तो इस कंचे को कल तक अपने पास ही रखना है, हाथ में या पर बैग में। हो गया सबको? सबको मिल गया? हो गया? जो सभी स्थिर बैठेंगे उस कंचे को अपने हाथ में लेंगे, आंखें बंद, और विचार करेंगे, उस कंचे को दबाएंगे और सोचेंगे ये सब निगेटिविटी, जीवन का दर्द ये कंचा है, दुख, दर्द, पीड़ा, भय, आक्रोश, चिड़चिड़ापन, पुरानी यादें, स्मृतियाँ, संस्कार, व्यसन, ये सब कुछ जैसे इस कंचे में समाया हुआ है, उसको जोर से पकड़ेंगे, और अनुभव करो अब हम पहुंच गए सूक्ष्म वतन बाबा के सामने। अपने हाथ को सामने करेंगे, आंखें बंद, और अब उस कंचे को गिरा दो नीचे जमीन पर। एक हल्कापन, सारी नेगेटिविटी, सारा दुख, सारा दर्द चला गया। इसी अवस्था में बैठेंगे, हाथ नीचे। अनुभव, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। और अब बाबा मुझे एक सौगात दे रहे हैं, शक्तियों की, वरदानों की, ज्ञान की, दिव्य गुणों की। फिर से उस कंचे को उठा लेंगे, अपने हाथ में रखेंगे, और अब अनुभव करो परमात्म शक्तियां मेरे साथ है, संपूर्ण ज्ञान मेरे साथ है, संपूर्ण ऊर्जा मेरे साथ है। मैं सभी शक्तियों की स्वामिनी हूं। मेरा मार्ग अब सहज हो गया है। मैं हर प्रकार के तुलना से, आलोचना से, शिकायत से मुक्त हूं। ओम शांति। अपनी डायरी उठाएंगे और उसमें धन्यवाद की एक ही शक्तिशाली लाइन लिखेंगे सोचकर। वो लाइन एक ही हो, बाबा के लिए हो, पर उस लाइन में जैसे बहुत सारा रहस्य समाया हुआ है। एक उदाहरण आपको देते हैं, बाइबल में एक उदाहरण है। जीसस क्राइस्ट आते, एक जगह शादी हो रही है, कोई फंक्शन है, और वहाँ जो शरबत होता है, वहाँ शराब दिखाया कहीं शरबत, वो ख़त्म हो जाता है। तो जीसस क्राइस्ट जाते हैं और जो पानी की हंडिया रखी होती है उसको हाथ लगाते हैं और वो पानी शरबत में बन जाता है। ये चमत्कार दिखाया है। विदेश में एक स्कूल में टीचर अपने बच्चों को कहता है कि इस प्रसंग पर एक लाइन लिखो, तो उस कक्षा में पाश्चात्य जगत के महान कवि बायरन, जो छोटा सा बच्चा है इस समय, वो बैठा रहता है। तो सब लोग लिखने में बिज़ी हो जाते हैं और वो टीचर बायरन के पास आते हैं और कहता है, तुमने क्या लिखा? वो कहता है, मैंने कुछ नहीं लिखा अभी तक। और फिर वो एक लाइन लिख देता है। वो इंग्लिश लिटरेचर में बड़ी प्रसिद्ध लाइन मानी जाती है। भाषा इंग्लिश भाषा में पानी को फीमेल के रूप में, वो भी कविताओं में फीमेल के रूप में माना जाता है, शी करके प्रयोग किया जाता है। तो वो लिखता है, शी द मास्टर टच्ड हर एंड शी ब्लॉसम्ड या ब्लूम्ड, द मास्टर टच्ड हर एंड शी ब्लश्ड। अर्थात मालिक ने, मतलब जीसस ने, उसको स्पर्श किया और वो शर्मा गई। इस चमत्कार का उसने ऐसा वर्णन लिखा, मतलब पानी को उसके मालिक ने हाथ लगाया और वो पानी शर्मा गई। मिराकल क्या था? पानी को उसने शरबत में कन्वर्ट कर दिया। इस एक लाइन को उसने, इस घटना को उसने एक लाइन में ऐसा लिखा था। तो अभी अपनी डायरी में एक ही लाइन लिखनी है धन्यवाद की, जिसकी शुरुआत होगी बाबा से या तो एंड होगा बाबा से। तो सभी सोचेंगे दो मिनट और लिखेंगे एक शक्तिशाली लाइन। योग और क्लास और लिखना सब साथ साथ। To write one living line, one must wait. एक शक्तिशाली जीवंत लाइन लिखने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। एक शक्तिशाली वाक्य बोलने के लिए कई घंटों की साधना आवश्यक है। सुबह आप लोगों ने गीत सुना होगा, हम ब्रह्मा कुमारी, सुना था ना? गीत बजा था एक। सुबह हम लोगों की क्लास होती है, एक बार छोटे लाल भाई जी ने क्लास कराई थी और अनुभव सुनाया था अपना खुद का। हम कमरे में गए और वो एक गीत लिखा जो सुबह सुना था। उसमें एक शब्द आता है, हम पावनकारी। सारा लिख के तो हो गया, पर वो एक कुछ तो शब्द वहां जोड़ना था, क्या जोड़ना हम समझ नहीं आ रहे। वो क्लास 6 बजे पूरा होता है, हम 6:30 बजे गए और 9:45 बजे तक वो लिखते रहे अपने कमरे में बैठकर। जैसे अनुभव किया कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूं, उस स्वरूप में स्थित होकर। तो वो एक शब्द वहां रह गया था बस, पर उसको लाने के लिए 2-3 घंटे लगे। पावनकारी, क्या पावनकारी? सोचने लगे क्या पावनकारी, हम - पावनकारी। और फिर अचानक टच हुआ, उसको ही टाइम लगा, बाकी हो गया। पर उस एक शब्द को लाने के लिए क्या, और फिर अचानक टच हुआ शौर्य, तो उसमें डाला है हम शौर्य पावनकारी। तो बताएंगे किसने क्या लिखा? क्या लिखा है किसने? शौर्य, 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 शौर्य। सुनाई नहीं दिया? मीनिंग, मीनिंग।
शौर्य का मतलब तो सभी को पता होगा, लेकिन आपने किस संदर्भ में उसको शौर्य पावनकारी लिखा?
हम सोच रहे थे वहां क्या डाले, क्या डाले। डालने के लिए तो बहुत कुछ भी डाल सकते हैं। कविता और गीत ऐसी चीज होती है कि जो आपने लिख दिया उसको कोई चैलेंज नहीं करेगा। उसमें कई बार स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी होती है, शब्द की भी रचना में भी मिस्टेक होती है। परंतु एक बार वो आ गया कि लोगों का ध्यान कभी शब्दों पर नहीं होता है, लोगों का ध्यान उस ट्यून में होता है, उसको गुनगुनाया जाता है और वही याद रहता है, या उस भाव पर होता है, शब्दों पर इतना। तो हमने जो डाला शौर्य, एक अलग शब्द है जो हमारा साहस है, जो शक्ति है। हमारा जो साहस है वो साहस बड़ा पवित्र साहस है, क्योंकि ब्रह्मचारी होना और परमात्मा आज्ञानुसार और श्रीमत अनुसार प्यूरिटी का पालन करना, ये अपने आप में एक शौर्य का कार्य है। सबसे बड़ा करेज चाहिए इसके लिए, ये सब नहीं कर सकते। अचानक टच हुआ कि इसको डाल दो और वो आ गया। तो कोई बहुत ज्यादा सोचा नहीं, परंतु माइंड को ब्लैंक कर दिया, तब वो अवतरित हुआ शब्द। अगर ज्यादा सोचते हैं तो नहीं आता है, अगर मन को खाली कर दो तो कोई ना कोई कुछ पॉइंट टच हो जाती है। तो भाव एक ही है, पवित्र होने का शौर्य, पावन बनाने का शौर्य, दूसरों को पवित्रता का पाठ पढ़ाने का शौर्य। क्योंकि पवित्रता एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अगर खुद नहीं कर रहे तो आपको अधिकार ही नहीं है किसी को बताने का, या फिर शब्दों में वो पावर ही नहीं आएगी। आप कहेंगे पर पावर नहीं रहेगी। तो दोनों अर्थ है, एक खुद के लिए और एक दूसरों के लिए। तो ऐसा उस समय
आपने लिखा हम सौर्य पावनकारी, हम सौर्य हैं पावनकारी या हम हैं सौर्य पावनकारी?
हम शौर्य पावनकारी है। उसको आप पूरी लाइन उस संदर्भ में सुनेंगे तो आपको टच होगा।
हमने लिखा है हम तो आपके थे ही, आप हमारे हो गए, इसके लिए आपको दिल से अनंत बार शुक्रिया।
तो हम तो आपके है ही,
हम तो आपके थे ही आप हमारे हो गए इसके लिए आपको दिल से अनंत बार शुक्रिया।
बहुत बहुत अच्छा। और किसने क्या लिखा? एक ही लाइन पर जिसमें पूरे जीवन का सार हो, एक ही लाइन।
दीदी आप
बताएंगे? ज्ञान रत्नों के सागर, बाप दादा का ज्ञान सुनवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा ने मुझे अपने क्या बनाया? सांसे। अच्छा, और आप हमारे जीवन में आए, जीवन बदल गया। और इस असार संसार में मुझे अपनाने के लिए आपका धन्यवाद। और किसने क्या लिखा? सबने लिखा है ना, कुछ भी बताओ जो लिखा है। हाँ, रोज एक नियम बनाना है, एक शक्तिशाली लाइन लिखनी है, बहुत पावरफुल लाइन, जस्ट अ सिंगल। हमें एक बार चोट लगी थी तो तब हमने, और बारिश आ रही थी बहुत, चोट क्या, वो साइकिल चढ़ा रहे थे ऊपर हम दो लोग मिलके, वो साइकिल गिर गई एकदम ऐसा ये था, तो यहाँ हल्का सा फ्रैक्चर जैसा हो गया था पर पीड़ा थी। तो फिर ओपीडी में भी बैठे थे और लिखना भी जारी था, यहाँ कुछ ऐसे लगा दिया था थोड़ा बैंडेज। तो एक पेशेंट ने अचानक कहा कि नहीं, मेरे जो बहुत दर्द था अभी एकदम दर्द चला गया। तो हमने उसमें फिर एक लाइन लिख दी थी, हर दर्द मेरा तूने मिटाया। सुबह बारिश हो रही थी, वो सनसेट पॉइंट म्यूजियम के उधर का, उसमें घूम रहे थे, अचानक बारिश चालू हो गई। तो एकदम से विचार आया, ये जो बारिश की बूंदी है, बूंदे आसमां से बरसे, बूंदे अमृत की, जैसे अमृत की बूंदे बरस रही है। और उसी में फिर दोपहर में वो डाल दिया था, हर दर्द मेरा तूने मिटाया, बारिश ये हरदम बाबा तेरे गीतों की। तो कभी कभी अचानक जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं उनको क्या करना है? लिख के रख देना है, क्योंकि बाद में नहीं आएंगे, वो खो जाएंगे, समाप्त तो हो जाएंगे। अनुभव करना है। जितनी चेतना शुद्ध होती जाती है, अपने आप क्रिएटिविटी बढ़ती जाती है, नए विचार, नए संकल्प, नई बातें, नई भावनाएं, अपने आप नए नए शब्द आने लगते हैं, और उनमें एक अजीब सी पावर भी होती है। तभी और एक एक्टिविटी करेंगे, इसमें ये समझना है कि मुझे श्रीमत पर चलना है तो कैसे चलना है। तो कुछ बहनें वहाँ से लेकर तो यहाँ तक, एक के पीछे एक यहाँ आ जाएंगे, वहाँ से लास्ट बहन वहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पर कोई भी आ जाओ और उनके पीछे दूसरे आ जाओ, तो आपको चलना है वहां से यहां तक चलना है, परंतु कैसे चलना है, एक पैर और उसको लगा के बिल्कुल दूसरा पैर, उनके पीछे दूसरे, उनके पीछे तीसरे, स्टार्ट। सोचना है कि ये जो है श्रीमत की लकीर है और मुझे इस श्रीमत की लकीर पर चलना है, तो कितना अटेंशन से चलना पड़ेगा, स्टार्ट। उनके पीछे कुछ लोग और आ जाओ, स्टार्ट। हाँ, आगे वाले को फॉलो करना है, गिरना नहीं है, पर एक पैर और चिपक के दूसरा पैर, अलर्ट। ये अभ्यास है, इसको कहते हैं टैंडम वॉकिंग। सोचो मैं श्रीमत पर हूं, कदम कदम पर सावधानी, कदम कदम पर सजगता। वहां पहुंचने के बाद अपने स्थान पर चले जाना, नॉर्मल वॉक करते हुए अपने स्थान पर अनुभव करो कि ये मार्ग श्रीमत का मार्ग है। और भी आ जाओ, स्टार्ट वॉकिंग, बिल्कुल लग लग के सारे ही आ जाओ। बहुत स्लोली, वहां से नहीं पीछे से, धीरे धीरे।
आसमां से बरसे बूंदे अमृत की, दिल में गूंजे धुन वो प्यारी मुरली की।
एक स्ट्रेट लाइन। चलते हुए जितना अटेंशन अब है, उतना ही अटेंशन जीवन के प्रत्येक सफर में। हाथ में अगर कंचा हो तो ले लो, नहीं लिया है तो ठीक है, पर उस कंचे को पकड़ के रखना है, ये सोचो कि बाबा मेरे साथ है। मौन, एकांत, एकाग्रता, ऊपर से शिव बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर। ये जीवन का मार्ग है, जीवन का पथ। प्रत्येक परमात्मा छत्र छाया मेरे सिर के ऊपर है। ये जीवन का पथ है, जन्म से मृत्यु तक का। कदम में पदम का अनुभव।
नजर जो नूर बरसाए,
एकाग्रता से मौन में और अनुभव करेंगे, परमात्म छत्र छाया मेरे ऊपर है, मेरे हर कदम में पदम है, और अनुभव ये भी करेंगे बाप के कदम पर कदम का अनुभव, जैसे ब्रह्मा बाप सामने चल रहा है और उसके प्रत्येक कदम पर मैं कदम रख रही हूँ। चलना ये मेडिटेशन बन जाए, चलना ये एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी बन जाए। यहां से जाकर स्ट्रेट लाइन कोई हो उस पर चलने का प्रयत्न करना है, दोनों पैर लग के, सामने का पैर बिल्कुल वहां से चालू होगा जहां पहला खत्म हो रहा है, और उसके आगे एक एक लाइन पर चलना है, केवल एक सिंगल लाइन, टेंडेम वॉक, और अनुभव करना है। इतना ही अटेंशन की आवश्यकता है जीवन के प्रत्येक घटना में। अगर ऐसा अटेंशन, अगर ऐसी सजगता, ऐसी अवेयरनेस हो तो माया विकार कभी हमारे जीवन में आ ही नहीं सकते। जब हम बेहोश हो जाते हैं तब गिरते हैं। जब हम अपने आप को भूल जाते हैं तब गिरते हैं। मैं ब्रह्मा कुमारी हूं, इस संसार का सबसे बड़ा सम्मान है। बहुत धीरे, बहुत शांति से, फरिश्तों की चाल, सजगता, अमूर्छा, माइंडफुलनेस, सोचो यहां से वहां तक का ये पथ जीवन का पथ है, जन्म से मृत्यु तक का ये मार्ग है। जो बैठे हैं वो सोचना इस मार्ग पे मुझे कैसे चलना है। मैं क्या करूं जिससे भूले ना हो, गफलत ना हो, विकार ना आए। धीरे धीरे शांति से अपने समान को याद करते हुए आत्मिक स्थिति मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ।
हम ब्रह्मा कुमारी,
हम ब्रह्मा कुमारी,
चढ़ी रूहानी
कुमारी, हम ब्रह्मा कुमारी, हम ब्रह्मा कुमारी,
हम कन्या निर्विकारी,
हम ब्रह्मा कुमारी, हम ब्रह्मा कुमारी, देह नहीं हम आत्मा निराकारी,
शिव शक्ति हम ज्ञान शस्त्रधारी, हम ब्रह्म कुमारी,
ब्रह्मचर्य की व्रत धारी, पवित्रता है शक्ति हमारी, जलादी काम कटारी, हम शौर्य पावनकारी,
हम ब्रह्म कुमारी, हम ब्रह्म कुमारी, युग परिवर्तन की हम जिम्मेदारी, सृष्टि के नीव हम ओजस्वी कुमारी,
छोड़ दी गुलामी की जान।